रामश्रेष्ठं मनुमति सचेतोत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमनुपरिमातुरिं गोष्ठवासिनं राधाकुण्डं दीर्घरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो जस्य प्रतिकृपया पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय परभक्ताय तो कल हम लोग मैंने प्रश्न उठाया कुछ प्रश्न मैंने किया कृष्ण ब्रज को छोड़ करके प्रेम भूमि को छोड़ करके ऐश्वर्य भूमि मथुरा में क्यों आए और आए तो फिर लौट जाते इस कार्य समाप्त होने पर तो लौटे नहीं कभी कभी आ जाते आए नहीं जहां पर जाना चाहिए स्वयं नहीं जा करके अपने दूत को भेजा चौथी बार कृष्ण तो सर्वसमर्थ हैं एक ही रात में समस्त मथुरा वासियों को लेकर के द्वारका में उपस्थित हो गए तो क्यों नहीं उन ब्रजवासियों को भी अपने मथुरा में ही ला लाते और वहीं उनसे रहते तो इन प्रश्नों का उत्तर आज हम देंगे जो हमारे गोस्वामियों ने उसका वर्णन किया जिसका हमारे परम मान्यवर पूज्यवर चतुर्वेदी ने सनातन गोस्वामी का नाम लिया सनातन गोस्वामी उनके अनुगत्य में जीव गोस्वामी और उनके अनुगत्य में हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बहुत ही मार्मिक इन श्लोकों की व्याख्या मैं उनसे थोड़ा सा उद्धृत कर कुछ बोलने का प्रयास करता मैं विद्वान नहीं हूँ कभी लोग कागज के घोड़े को भी आकाश में उड़ा सकते हैं उनकी कविता की महिमा है तो हमारे चतुर्वेदी जी असामान्य असाधारण कवि भी हैं देखो ना हमारे जैसे कागज के घोड़े को कैसे उड़ा दिया आकाश में ये इनकी महिमा है इनकी कविता है ये दृढ़ को भी महान बना सकते हैं महान को भी नीचे उतार सकते हैं ये कविता नहीं अब हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को गुणहीन और कहां पहुंचा दिया आसपास तो इसके पहले ब्रज की स्थिति क्या है जब मथुरा कृष्ण चले आए इसके संबंध में हमारे श्रीमान तीर्थ महाराज जी कुछ बोले 10 मिनट
तदनंतर उपस्थित प्रधान अतिथि श्री डॉक्टर जब श्री कृष्ण मनुष्य गए तब से तीन महीना बीत चुका है। कंस को मारने के पश्चात देव दिवस ने कृष्ण बलराम को उज्जैन भेज दिया। गुरुप्रिय में 64 दिन में 64 कला विद्याओं का अध्ययन कर लौट करके आए। मृत गुरु पुत्र को दक्षिणा में भी देख करके आए। लौटते लौटते 3 महीना जबकि मधुपुरी मथुरा में राजमहल की छत पर खड़े हैं। निकट में जमुना जी को कंकल धारा में देखते हुए श्याम सुंदर के मन में व्रत की सारी स्मृति हो रही। उस समय धैर्य को खो करके स्वयं बोले के कच्छोत्थम प्रजन सौम पुत्र नाम प्रतिमा हे सौम हे वृद्धा तुम प्रज में जाओ पिता माता के दृष्टांत तो इस प्रकार बड़े व्यकुल होते हुए गोपियों को संदेश भेजा कि इन संदेशों से गोपियों की तो भेज करके गोपियों की प्रेम की पाठशाला में जो सिखाता है तब अपनी हृदय की व्यथा को व्यक्त कर सकते। इसलिए कृष्ण ने तो उद्धव को भेजा परंतु उद्धव क्या कर सकते हैं। सारे ज्ञान की गठरी तो कुंजों की धारी में खुल गई है। ब्रज में पहुंचते पहुंचते नंद बाबा के सामने जब पहुंचे उनके प्रेम के बाहर को देख करके स्वयं छूट गए जो उनकी एक भी बोली नहीं निकल सकी। अंत तक प्रणाम कर जहां पर नंद बाबा यशोदा मां रो रहे हैं अंधे के समान बैठे हुए हैं। 3 महीने तक ब्रज में कहीं कोई खाए पिए नहीं नंद भवन में झाड़ू तक नहीं लगा ये स्थिति बनी और ब्रज के पशु पक्षी कोई खाए पिए नहीं पक्षी कोई पूजन नहीं करते भौरे फूलों में नहीं बैठती कोयल कुहू कुहू आवाज नहीं लगाती मयूर मयूर की केता धन से अब नाश्ते भी नहीं। इसी प्रकार ब्रज गोपियां वन में पड़ी थी है बिरज की राधा को तो भ्रूण के सेठ में सुना तो रुई ले करके श्वास चला या नहीं ये भी देखा जाता है। कभी कभी बिरह अनुवाद में जो उनके भावों का वर्णन हुआ है अभी हम लोग सुनेंगे। सुहागनंद जी के जो भाव चित्तजल को महाभाव में संयम को आजन को विजम को अभिजम को आदि के द्वारा दिखाया दिन दया नाम हे मथुरा नाम कदा तो लोक हृदयाम कदा लोक का दिनों के प्रति तैयार करने वाले क्या मेरे जैसे तीन हिरण के प्रति आपकी कोई करुणा ये कदापि संभव नहीं। हे मथुरा नाथ यदि आप वृंदावन नाथ होते तो अवश्य लौट करके आते और किस भरोसा से ये कहो कि आप वृंदावन को आए अब तो मथुरा घिस कर गए हैं मथुरा कलाओ लोक के से क्या कभी दर्शन किए कदापि संभव होगा हृदय तरह लोक का तुम्हारे अदर्शन के कारण आज हृदय का अतिशय आतंक हो गया जैसे श्रीमान भाई अभिमत मत भूल जाओ आज बुद्ध का श्री राधा जी पुष्टि है उद्धव ये बताओ क्या आज पुत्र श्याम सुंदर मथुरापुरी में है या कहीं दूर निकल गए यदि मथुरापुरी में होंगे तो कभी लौटने की संभावना दिखती क्या कभी अपने प्रजनों के लिए स्मरण करते हैं क्या कभी अपने पिता माता का स्मरण करते हैं अपने गायों के लिए कभी क्या स्मरण करते हैं जो वृक्षों को लगाए हैं क्या कभी स्मरण होता है उन किनारदाशियों के लिए कभी यह भी कहा करते होंगे कि हे मथुरा किनारियों, तुम दोनों ने जैसे सेवा की है या करती हो, ऐसे सेवा को व्रत की गोपियां करने को चाहती थी पर क्या इस रूप में भी हम लोगों का नाम ले लिया करते? क्या यह भी कभी संभव होगा कि सारे व्रत मथुरा भूमि में द्वारका भूमि में सारे विश्व में घूमते हुए व्रत की गोपियां जैसी कोई सेवा करने वाले नहीं थे? ऐसा सोच समझ कर सब जगह से दौड़ कर लिए अपने सुगंधित भजन कर क्या हमारे मस्तक पर अर्पण करेंगे? इतना कहते ही विश्ववर्णन मूर्छित हो सकेंगे। ऐसे ऐसे दीपोन्माद का वर्णन होता है जब विश्ववर्णन शिलाधारी कभी विरह में ऐसे दीपोन्माद में थोड़ी भी कभी वृंदावन में तो सेवा कुंज के द्वार पर पहुंच करके जेवनी सेवा कुंज को देखे तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। कुछ समय स्वस्थ सखिया रोने लगते कृष्णा महामंत्र के द्वारा कीर्तन करते भी बड़े कष्ट से उनकी चेतना को लौटा। उसके बाद से राजधानी जब जमुना किनारे गई वहां जाकर के बेटों के लगाए लगाए लगा करके रोने लगी। फिर मन लीजिए अब तो दुर्लभ व्यक्ति का दर्शन मिलना बड़ा कठिन है, क्या कभी श्याम सुंदर का दर्शन होना संभव नहीं? अब तुम्हारे बीच में जो फूल खिलेंगे उन फूलों के हार बना करके सखिया उस दुर्लभ व्यक्ति श्याम सुंदर के गले में बैठा। और उस समय जब तुम कृष्ण के गले का हार पहनेंगी मेरा याद करना, कभी किसी समय राधा ने मुझे लगाया। इसी प्रकार लोग की राधा की चली वृंदा के सेवा कुंज के अंदर में उस समय आकर के विशाखा जी से बोली कि हे विशाखी, इस गले में हार को पहन करके क्या काम? तुम इस हार को पहनना जब कृष्ण से मिलन होगा तो यह हार कृष्ण के वक्षस्थल को स्पर्श करेगा। इसी तरह से उस हार को निकाला तो हार इतने में विशाखा जी के हाथ में थे। उस समय ललिता जी से कहा, ललिते अब तो मैं जीव की नहीं अब तो मरुण के बिस्तर, मेरे मरने के बाद एक काम करना। ना तोड़ायो राधा
कृष्णदास
मन रो लागे न
बोले श्रृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओ मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम पीना मन लागे Thank you.
में संजय का महाभारत हुआ। संजय का कृष्ण भगवान की दृष्टि बने प्रश्न किए
जरा सिर में कम आए। बहुत कम लगाए। वृंदावन प्रेम की भूमि है, माधुर्य भूमि है, मथुरा ऐश्वर्य की भूमि है। प्रेम भूख को भीमन को छोड़ करके कृष्ण ऐश्वर्य की भूमि मथुरा में क्यों आ गए? जहां प्यार मिलता है वहीं आदमी रहता है। इसलिए आए क्यों? कृष्ण का स्वभाव कुछ निराला है, हम लोग जैसा उनका स्वभाव नहीं है। उनकी प्रतिज्ञा है ये जथांग माम प्रपत्यं ताम तथैव भजा। गोपियां तो अपने आर्य धर्म को, पति को, लोक धर्म को, निंदा इत्यादि को भी छोड़कर कृष्ण के चरणों में एकांत रूप से आए। कृष्ण के लिए संभव है या नहीं, ये संभव नहीं है। ब्रज की जो गोपियां हैं उनका प्रेम तो अद्भुत है, इसलिए वो मथुरा वृंदावन में ही आबद्ध नहीं रहेंगे। अपनी मैया को कैसे छोड़ सकते हैं, पिता को कैसे छोड़ सकते हैं? मथुरा के जो भक्त हैं देवकी और वसुदेव को कंस ने हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ रखा है, पत्थरों से उनके हृदय में आघात करता है, गाली गलौज करता है। उसको बचाने की जरूरत है कि नहीं बचाने की जरूरत है? वो कैसे भूल सकते हैं? कृष्ण के लिए उन्होंने जीवन धारण किया है, उनको कैसे छोड़ देंगे? इसके अतिरिक्त और भी भक्त हैं, कैसे छोड़ द्वारकावासियों को छोड़ देंगे? इसलिए उनका स्वरूप ही ऐसा है और कहा भी है उन्होंने, न पारे हम निर्भर। हे गोपियों, देवताओं की करोड़ों वर्ष की आयु पा करके तुम्हारा उरूर नहीं हो सकता। तुम अपने आप अपनी कृपा से ही हमारे ऊपर में प्रसन्न होकर तुम ये उरूर कर सकते। इसलिए मथुरा में जाना भी आवश्यक हो गया देवकी और वसुदेव की अपने और भक्त। तो फिर लौटे क्यों नहीं? कंस को मारा, उनका बंधन छुड़ा दिया, फिर लौटाना चाहिए। काम अधूरा था इसलिए लौटे नहीं, काम को पूरा करके ही लौटना है। वो काम क्या? कंस की दो स्त्रियां अस्ति नास्ति
प्राप्ति,
वो अपने पिताजी के पास में पहुंची। जरासंध मगध का राजा उसके पास में पहुंची, वहां बलवान बोली, तुम्हारे दामाद तो मंच पर बैठे हुए थे, दंगल देख करके आनंद ले रहे थे, और ये कृष्ण ऊपर मंच पर सिंह की भांति लपक गया, टूट गया और उसको गिरा करके मार डाला, ये कुछ भी नहीं बोला। हम लोगों को मार पीट करके धमका करके भगा दिया गया और बहुत सी बातें की, किंतु कंस ने इतना उत्पात किया ये सब कुछ नहीं था। कंस बिगड़ गया, जरासंध बिगड़ गया और बदला लेने की सोची, और वो प्रतिवर्ष अपने सारे सैन्य समाज को जुटाकर मथुरा पर आक्रमण करता। कैसे जाए, कब वो आक्रमण कर देगा? इसलिए नहीं गए। दूसरा भी कारण था, हम आगे और बतलाएंगे। और किस लिए नहीं गए, और भी एक कारण था, ये गंभीर दूसरा कारण। यदि कृष्ण कभी लौटे, एक दो दिन रह करके लौट आए और फिर मथुरा में आकर के जरासंध से युद्ध इत्यादि कार्य करें, यह भी संभव नहीं। विरह एक ऐसी चीज है जो क्षण भर के लिए गए तो ये विरह का ज्वर और अधिक बढ़ जाता है, गोपियां इसको संभाल नहीं सकते। क्या तात्पर्य? जैसे तवा जल रहा हो और उस पर एक बूंद पानी छिड़क दिया जाए, वो छन्न करके उड़ जाएगा, ठीक वैसे ही गोपियों का प्रेम ऐसा है जो लोहे की तवे की तरह भांति उनके विरह के ज्वाला में जल रहा है। और कृष्ण एक क्षण के लिए, दो क्षण के लिए, एक दिन के लिए, दो दिन में आएंगे, तो उनका विरह का ज्वर उतना अधिक बढ़ जाएगा जो कृष्ण संभाल नहीं सकते। इसलिए आकर के भी फिर लौटे नहीं। अरे कभी कभी तो आ जाते तो विरह की विधि से नहीं गए, डर के मारे स्वामी न जाकर के दूत भेजा, किस लिए भेजा? कई माता पिता और हमारे ब्रजवासी लोग मेरे विरह में मर न जाएं, जाकर तुम उनको याद दिलाओ मैं आऊंगा। जाते समय कृष्ण ने दूत के माध्यम से, अथवा स्वयं अपने वाणी रूपी दूत के माध्यम से गोपियों को यह धैर्य दिलाया, आयास से मैं आऊंगा। गोपियां जानती हैं, नंद बाबा जानते हैं, जो सत्यवादी कृष्ण है वो जरूर आएगा, किंतु कब आएगा इसलिए प्राणों को धारण नहीं कर सकते। इसलिए दूत के द्वारा यही याद दिलाते हैं कि तुम लोग घबराओ नहीं, मैं अभी आ रहा हूं, थोड़ा सा काम बाकी है। इसलिए फ्री ब्रजवासियों को क्यों नहीं बुलाते? यह रस संकट, रस संकट क्या इसको समझिए। रस संकट क्या? मथुरा में कृष्ण का क्षत्रिय वेश, हाथों में वाण धनुष रख सकते हैं, चक्र रख सकते हैं, शंख चक्र गदा भी धारण कर सकते हैं, किंतु वृंदावन में गोप वेश बेनू कर, हाथ में मुरली रहेगी, मोर पंख रहेंगे, मथुरा में यह संभव नहीं। नवकिशोर नटवर गोपवेश, नंद बाबा हमारे पिता हैं, मैया हमारी यशोदा जी हैं, मैं गोपियों का प्राण बल्लभ हूं ये अभिमान होता है। मथुरा में बंसी साथ नहीं जाएगी, मोर मुकुट धारण नहीं करेंगे, और वहां पर अभिमान है क्षत्रिय वेश, मैं देवकी नंदन वसुदेव नंदन। इसलिए वो उनको बुलाने से फिर क्या होगा गोपियों को और नंद बाबा को? क्षत्रिय वेश उनको अच्छा नहीं लगता, उनको तो वेश गोप वेश में ही, बंसी में हाथों मोर मुकुट के साथ ही में उनको पसंद है। एक बार मैं मथुरा में दर्शन करने के लिए गया, हमारे साथ में हजारों आदमी थे, तो वहां पर छोटा सा भाषण मैंने दिया कि राधा जी ने आदेश दिया है जाकर के देखो तो वहां पर मथुरा का सचमुच में राजा बना हुआ है, हमें याद करता है कि नहीं, और उसकी क्या स्थिति है जरा देख करके आए। तो हम राधा जी की दासी चेरी हम लोग आए हैं देखने के लिए, उसे बातचीत करना चाहते थे, कुछ स्मरण कराना चाहते थे, किंतु द्वारकाधीश मथुराधीश वो तो अपने मंदिर में छिप गया है, निकलता नहीं है लज्जा के मारे, उसमें उनका पट बंद था, छिप गया है। मैं ब्रजवासियों को क्या मुख दिखलाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करके आया। तो वहां के जितने लोग थे बड़े प्रसन्न हुए, सारा ढेर प्रसाद इत्यादि हमको दिए। तो मथुरा में क्षत्रिय वेश और वहां पर माधुर्य वेश, गोप वेश पहनी पर। मथुरा के जादव लोगों के वे पर देवता है, पर देवता
विष्णुनांग परदेव,
विष्णुनांग परदेव, उनके परम देवता है, उनको भोग लगाते हैं, कृष्ण को पर देवता समझते हैं सभी, उनके आराध्य देव हैं। और वृंदावन के गोपों के स्वजन हैं, नंद बाबा के यशोदा जी के बेटे हैं, नंद बाबा की खड़ाऊं सिर पर लेकर के थई थई नाचते हुए चलते हैं, गोपों के जूठ को खाते हैं। कोई मथुरा द्वारका में ऐसा है जो कृष्ण को अपना जूठा खिला दे? ये संभव नहीं। ये सब ऐश्वर्य भूमि है, मथुरा में माधुर्य भूमि है, वृंदावन में माधुर्य। जादव लोग कृष्ण की चरण की धूली को अपने सिर पर लेते हैं, और ब्रज में गोपियां अपने चरणों के रस से कृष्ण का अभिषेक करती हैं। चरण में महावर लगा करके गोपियां राधे राधे लिख देती हैं, और वो श्रीमती राधिका जी पैरों का छाप उनके सिर पर दे देती है, ये मेरे हैं। कितना सुंदर सब भाव है। देवी और वसुदेव, जब कृष्ण ने कंस को मारा, वसुदेव देवकी वहीं पर थे, उनकी बेड़ी हथकड़ी हटा दी और उनके चरणों में प्रणाम किया कृष्ण ने, और बलदेव जी ने वसुदेव जी को प्रणाम करके उनकी गोदी में बैठ गए, किंतु वो प्रणाम नहीं ग्रहण कर सके। ये तो साक्षात नारायण है, ऐश्वर्य भाव है। जो कंस, जो नागार्जुन हजार हाथियों के बल से भी बलशाली, उसको एक सेकंड के अंदर में उसको परलोक में सिधार दिया, ये कैसे सुनो। इस तरह से देवकी मैया और वो संकुचित हो गए और उनको प्रणाम करने लगे। यशोदा जी को विश्व ब्रह्मांड मुख में देख लाया, यशोदा जी ने क्या किया? हमारे बच्चे को किसी भूत लग गया या टोना कर दिया, ब्राह्मणों को बुलाया, लाखों गायें दान की और काली गैया के मूत्र से और गोबर से मिला करके काली गैया के पूछ से उनका अभिषेक करके वो भूत और टोना दूर किया गया। देखो कितना अंतर है। दूसरी बात अब ये रखें, कृष्ण नहीं गए, मथुरा के समस्त लोगों को लेकर के द्वारका में जैसे एक रात नहीं चले गए, ऐसे सब ब्रजवासियों को, गोपों को, गोपियों को, नंद बाबा, यशोदा, श्रीमती राधिका, उनकी सहेलियों को सब रात ही रात में वहां पर पहुंचा लेते और उनके साथ में रहते, ये संभव नहीं। मतलब ऐश्वर्य भूमि है। यदि कोई फूल होता है, पुष्प होता है, अपने वृंत में ही वो फूलता है, विकसित होता है, प्रसन्न होता है, वृंत बने पेड़ के साथ में उनकी डालियों से संलग्न रहता है, तो वो पुष्पित होता है, उसकी गंध होती है। और यदि आप उसके वृंत से, उसके डालियों से तोड़ लो तो क्या होगा? मुरझा जाएगा, उसकी सगंध दूर हो जाएगी, वो बच नहीं सकता। तो ये ब्रज की गोप गोपियां हैं, कृष्ण भले ही जाएं, किंतु ये वृंदावन को, अपने वृंत को नहीं छोड़ सकती। यदि वहां जाएंगी और वहां पर कृष्ण की 16,000 रानियां बैठी हैं, महारानी कुब्जा जी वहां हैं, ये कैसे संभव है गोपी वहां पर जाए? इसलिए जा नहीं सकते, प्राण छोड़ देंगे किंतु वृंदावन को नहीं छोड़ सकते। इस तरह से ये प्रश्नों का उत्तर हुआ। अब हम लोग नंद बाबा के पास है और उद्धव जहां पर खड़े हैं। नंद बाबा, कल आप लोगों को बतलाया कि कैसे कृष्ण के विरह में अधीर हो रहे हैं, कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे, किसी प्रकार से सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी अपने मित्र को स्मरण कर रहे हैं। वे कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करने लगे। स्मरण करते करते अधीर हो जाते तो कभी पनघट पर पहुंच जाते जमुना जी, और वहां पर जाते तो क्या देखते, सूना सूना, किंतु वहां पर कृष्ण के छोटे छोटे पांव उसमें चिन्ह है। देख करके सोचते ऐसी कोई स्थान नहीं है ऐसा जहां कृष्ण ने रमा नहीं, विलास नहीं किया, जमुना में यहीं पर स्नान करते थे, उनका पीरा बढ़ जाते। गिरिराज में जाते उनको भूलने के लिए और स्मरण होता। ऐसा कोई वृक्ष नहीं, लताएं नहीं जिसके अंदर में, जिसके पास में कृष्ण ने गोपो और गोपियों के साथ में लीलाएं नहीं। मानसिंह गंगा, भांडीर बन, बरसाना इत्यादि जो स्थान है नंदमा, कहीं नहीं चैन मिले। और इस प्रकार से कहते कहते अधीर हो गए और विधि उनकी बंद हो गई, बोल न सके। अब ये उद्धव जी अनुभव किया, वहां प्रेम की मूर्ति ली है, ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं, देखा नहीं, जैसे नंद बाबा को इतना प्रेम। यशोदा मैया इन बातों को सुन रही है और आंख बंद किए हुए, आंखों से अश्रु धाराएं बह रही हैं, स्तन से दूध बरगला रहा, कुछ बोल नहीं पा रही। नंद मामा वो सोच रहे हैं जिनको सांत्वना कैसे दे, बड़े रो करके अधीर हो रहे हैं। उन्होंने सोचा यदि मैं कहूं नंद बाबा रोइए मत तो ये सांत्वना कैसे होगी, रोइए मत, शास्त्र हमारा मुख बंद कर देंगे। क्यों, यदि कृष्ण के लिए आंखों में एक बार एक भी आंसू छलक आया, गिर गया तो उसका जीवन सफल हो गया कृष्ण के लिए। और ये कृष्ण के विरह में तड़प करके इतना रो रहे हैं कि इनको कैसे कहूं ये तुम मत रो, तो क्या कहूं, खूब रो महाराज आप धन्य हैं, कृष्ण के लिए रोए खूब रोइए, ऐसा भी तो नहीं कर सकता, ये सांत्वना नहीं होगी, ये कृष्ण के आदेश के विरुद्ध होगा, ऐसा भी नहीं कर, किंतु कहूं तो क्या। बृहस्पति जी के शिष्य जैसे अभी चतुर्वेदी जी ने बताया, कृष्ण के मित्र कितने बुद्धिमान, उनकी बुद्धि में नहीं आया कि मैं क्या कहूं उनको सांत्वना दूं, किस शब्दों में, किन शब्दों में। अंत में बरबस उनके मुख से निकल गया, ओहो आप बड़े सौभाग्यवान हैं, ओहो यूयम सुमपूर्णार्थ भवत्तो लोकपूर्ण। जगत में यदि कोई सौभाग्यवान है आप और यशोदा है। क्यों, कृष्ण जो विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले हैं, उन प्रभुओं का भी प्रभु है, स्वयं भगवान है, आज तुम्हारे पुत्र रूप में आए हैं, और पुत्र जैसा तुम लालन पालन कर रहे हो दोनों, उनको उन कृष्ण को अपना स्तनपान यशोदा जी करा रही हैं, आपके समान ऐसा कौन सौभाग्यवान है। और उनके लिए, उस प्रभु के लिए इतना प्रेम हमने आज तक देखा और सुना नहीं, शास्त्र में भी वर्णन नहीं। गेहूं कहा नंद बाबा जी और रोने लगे, और रोते हुए कहे अरे बेटे मैंने समझा तुम कृष्ण के मित्र हो, सचमुच में बुद्धिमान हो, किंतु मैं देखता हूं कि तुम अभी बालक है, अबो प्रेम को तुम समझ नहीं सका, जीवन का महत्व तुमने समझा नहीं। मैंने तो समझा, मनी मन में सोच रहे हैं क्यों, वासुदेवी भगवती जासाम अत्यर्पितम मनः, हा कृष्ण के प्रति आपका चित्त अर्पित है, तान मान धन वचन व अन्नाभिलाषिता श्लोक है, इसमें पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। तो दान के द्वारा, व्रत के द्वारा, तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा ऐसी
कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम होना असंभव है। भगवत उत्तम श्लोक है, भौतिक भी उत्तम। आज आप लोगों ने विरहीन में महाभागा गोपियों के लिए उद्धव जी ने पीछे कहा, तो नंद बाबा कह रहे हैं अभी तक तुमको अकल नहीं हुई। कैसे? देखो, किसी को कांच का एक टुकड़ा मिल जाए, मिलने के बाद देखा जी बड़ा सुंदर सुकांत है, किसी ने बतला ये कांच का टुकड़ा नहीं है, ये तो कोहिनूर हीरा है, और कुछ देर के बाद में किसी ने उसको उठा लिया, चुरा लिया। अब वो तड़पता है उसके लिए, अरे ये तो कोहिनूर हीरा था, मैं तो कृष्ण को अपना बेटा जानता था केवल, और कुछ नहीं जानता था, और तुम कह रहे हो बड़े ज्ञानी हो जे ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये विश्व की जोनी है, सबके घट घट में रमता है, अंतर्यामी है, और मैंने उसको पुत्र मान लिया है। उद्धव, थोड़ी सी बुद्धि होती तो तुम सोच सकता था क्या? आज कृष्ण स्वयं भगवान हमारे घर में पुत्र के रूप में आए और मैं सेवा से उनको प्रसन्न नहीं कर सका, प्रसन्न मैं नहीं कर सका। हुआ क्या, हमसे वो रूठ कर या हमारी सेवा से असंतुष्ट होकर के जहां उनको प्रेम मिलता है वहीं पर वो चले गए, इसलिए हमारे अंदर में प्रेम कहां? अरे हाँ, पिता तो एक था, कौन पिता था? महाराज दशरथ। राम के योग वियोग में हाराम हाराम और हाराम, इसके बाद में हाराम नहीं आया और वो स्वर्ग लोक को सिधार गया। आ मेरा ये हृदय वज्र से बना है, मैं अभी मर नहीं गया, मरता क्यों नहीं? क्योंकि प्रेम नहीं। ये कह करके सारी रात उनसे वार्तालाप हुई, उद्धव ने समझाया पीछे से वो तो सबका अंतर्यामी है, आप उसको पुत्र मान रहे हैं इत्यादि। रात भर ऐसे ही बातें होती रही। सवेरा हुआ, जब सवेरा हुआ उद्धव जी पासी में कृष्ण कुंड है, नंदगांव में जाने पर वशिष्ठ के पास कृष्ण कुंड में स्नान किया, और पासी में ललिता कुंड और कुंज है, पासी में उद्धव क्यारी है, उद्धव क्यारी समय हो गया थोड़ा, उद्धव क्यारी है। जिस दिन से कृष्ण ब्रज में पधारे उस दिन से वो उसी वन में घर में नहीं लौटी, जोग माया ने उनकी प्रतिकृति कर करके उन गोपों के पास में रख दिया जिनसे वो विवाहित, और किसी ने नहीं समझा, गोपियां वन में रही, विरह में तड़पती रही, मर क्यों नहीं गई? क्योंकि चित्त उनका अपने हृदय में नहीं है, शरीर में नहीं है, वो तो कृष्ण के पास में रख दिया, इसलिए कृष्ण के पास रख दिया तो वो मरे कैसे? या कृष्ण ऐसा समझते हैं इनको तड़फा करके मुझे बड़ा आनंद आता, फिर दूसरा ऐसा तड़फाने जो तड़फे मेरे लिए वो कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं इनका मन इनका प्राण अपने पास रखूं और इन ये तड़फें और हम देखें, मानो ऐसा कुछ तड़फ रही है मर नहीं है। किस लिए? आशा में अटका हुआ है उनका प्राण, क्या आयास से मैं आऊंगा, इसलिए प्राण उनके निकलते हैं। जब वो स्नान किया और उधर देखा तो जोग माया ने उनको दिखला रही गोपियां यहां पर हैं, गोपियां आपस में बात कर रही, क्या बात कर रही, बात कर रही, अरे ये सोने का रथ किसका आया, कौन आया, क्यों आया? अक्रूर तो सोने के रथ में आया था, हमारे प्राणों को हर ले गया, किस लिए आया? दूसरी सखी ने बतलाया आया है, कुछ जरूरत है क्या? कंस मारा गया, उसको पिंड दान करना है, और वो पिंड दान करेंगे आप? मथुरा में पिंड कुछ नहीं, मथुरा में पिंड नहीं, जय हो जय हो, आपकी जय हो। बैठिए पधारिए,
पिंड देना है।
हाँ, तो मथुरा में पिंड नहीं, ये इसको दान करें। तेरहवीं में एक पिंड दान होता है, पिंड दान कैसे हो? भेजा है शायद अक्रूर को, अक्रूर आया है रथ लेकर के, सोने पर चढ़ करके, पिंड के लिए हम लोग कृष्ण के विरह में मर जाएंगी, और सारा पिंड हृत पिंड लेकर के ले जाएगा, और उसका वो पिंड देगा। इसलिए दूसरी गोपी कहती है, ये आया है, ये कृष्ण का दूत है मालूम पड़ता है, कृष्ण जैसा ही श्यामला है, उनकी वनमाला लेकर के आया है, उनके वस्त्र भी धारण किए हैं, श्याम है किंतु श्याम नहीं, श्याम ही है श्याम नहीं। कैसे जान गए ये दूत है? कभी हमारी जो नाक है वो अभ्रंत है, कृष्ण के सुगंध को पहचानती है, ये जो बनमाला से सुगंध आ रही, उसके वस्त्रों से जो सुगंध आ रहा है, ये कृष्ण के अंगों का ही गंध है, इसलिए कृष्ण के दूत के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो यहां क्यों आया? माता पिता के पास में जाता है, यहां क्यों आया? ये कहते हैं हमसे तो कोई संबंध नहीं, मानो तो संबंध है, नहीं तो संबंध नहीं, इसलिए ही आया। इसलिए हमारे पास में आने के, उद्धव तुम उधर जा, हमारे आने की कोई जरूरत नहीं, अरे वो संबंध था उसने खत्म कर दिया और हमारा संबंध भी टूट गया, हम तो उसको भूलना चाहती हैं, केवल भूल नहीं पाती उसकी कथाओं। इस प्रकार से कहते कहते उद्धव जी वहां पर पहुंचे गोपियों के समाज में, और गोपियों के समाज में जब पहुंचे, गोपियों को देखा, राधा जी को देखा, जैसा कि श्रीमान हमारे विश्वामित्र महाराज ने फूलों की सेज पर सोई है कमल के, वो चूरमूर हो गए, चंदन लगाया गया है शीतलता के लिए, किंतु वह सूख करके चूर्ण हो गया। प्राण है या नहीं देख रही हैं, रूई से देखा, चल तो रहा। थोड़ी देर के बाद उद्धव पहुंच गए, बैठ रहे हैं दूर से, और इतने में एक भ्रमर गुंजार करता हुआ राधा जी के चरण कमलों को पद्म समझता हुआ, कमल समझता हुआ, वहीं पर कुछ मड़राने लगा, मानो उस कमल में प्रवेश होकर रस चूसेगा, मधु के लोभ से राधा जी को चरण कमल वहीं पर भक्त करने लग गया। ध्यायंती कृष्ण संगमम, और वो जो सेज पर सोई श्रीमती राधिका जी हैं, ध्यायंती क्या ध्यान कर रही हैं? बिना किसी कामनी के रह नहीं सकता, वो मथुरा में गया है, वहां जादुओं की हजारों रमणियां हैं, पत्नियां हैं, अद्भुत अद्भुत सुंदर हैं, हमसे भी सुंदरी होगी, शायद उसी में रंग गया, और इनका ये काला दूत आया अपने गुल्फों में वही कुमकुम लगा करके, जिसको गोपियां लगाती हैं कृष्ण के चरणों में या उनकी माला में लग गया, वहीं से उड़ करके आ रहा, हाँ में विभोर हो गई, जल प्रजल्प अनुजल जल इत्यादि करने लगी, दिव्योन्माद में। उनके अतिरिक्त दिव्योन्माद थोड़ा सा वर्णन किया गया है द्वारका के रानियों में, थोड़ा सा, किंतु पूर्ण दिव्योन्माद और उसकी अवस्था में कैसी इनकी अवस्था होती है, उसी में ये भ्रमर गीत का गायन हुआ। इसको अब थोड़ी देर के बाद निर्णय कर, अरे इनको कष्ट क्यों दे रहे हैं, आने जाने में इनको कष्ट होगा।
कष्ट नहीं होगा महाराज जी, आनंद मिलेगा, आपका आशीर्वाद नहीं प्राप्त करेंगे तो कैसे जाएंगे। और भजन के प्रारंभ में मैं यहाँ की व्यवस्था में जो आप श्रृंगार देख रहे हैं वो श्रृंगार किया है श्रीमती चालू ज्ञानी जी ने। वो अपनी हमारे निवेदन पर महाराज जी के चरणों में अपनी भावांजलि जितने रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगी।
ठीक हूँ,
आपका नाम मैंने सुना है,
आपका आशीर्वाद, आप कैसे हैं?
और आपके सीरियलों में भी आपके कीर्तन सुने हैं, बहुत आप धन्य हैं,
कृपा करिए
आपको
आप सबकी कृपा रहे तो ठीक रहेगा।
बहुत
सर बैठेंगे ना थोड़ी देर, कार्यक्रम में रहेंगे ना?
हाँ, बेटी तुम्हारा सफल भक्ति हो।
जी की प्रसिद्ध गायिका है हेमलता,
हेमलता जी
वृंदावन का कृष्ण सबकी आंखों का प्यारा,
अभी यही कीर्तन आज करना, आज वही करें।
माला जी के दर्शन करके ही ऐसी विभूति है, महाराज जी का दर्शन करके सारे कष्ट दूर हो रही है, मन में एक दिव्य भाव जागता है। और अब श्रीमती चारुष्का ज्ञानी जी, मैं चाहूंगा कि आप सब कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करें और जो बड़े उन्हें आशीर्वाद दें। सारा श्रृंगार उन्होंने किया बड़े भाव से, हमने गायिका के रूप में ना देकर के एक भावांजलि के रूप में लेते हैं और ज्यादा से निवेदन करेंगे कि मयूर में एक सूचना है मेरे पास। मुझे अभी मैं बाहर गया था तो एक किसी मारुति कार की गाड़ी की चाबी मिली हुई है इस महान भावकिनों से आपके लिए।
Thank you. ऐसा अभी आज विशेष रूप से आज की भावना के लिए लोग ज्ञान देवी और बाबा जी प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें मैं अपने शब्दों में विश्व का आत्मा आश्रय मानता हूं। राधा मां का विषय नहीं है, जिनके बारे में से लिखना चाहूंगा अद्भुत स्मरण शक्ति, अद्भुत शब्दकोश, अद्भुत कवि और अद्भुत संगीतकार के रूप में एक बहुत सुशील और मिलनसार व्यक्तित्व है। ये सबसे बड़ी बात है, सरल व्यक्तित्व है और मैं किस शब्दों में प्रशंसा करूं। और आज महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। महाराज जी के लिए डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने जो कहा उससे भी अधिक महाराज जी का दिग्दर्शन मैंने व्यक्तिगत रूप से किया। कुछ पलों के लिए उनके कक्ष में जाकर के जो मुझे अनुभूत हुई है महाराज जी से संसद करके जो सचमुच दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, दर्शन का दिव्य ज्ञान वो मुझे प्राप्त हुआ। अब मैं श्री रवि देव से निवेदन करूंगा कि भक्तों के बीच में भक्त के रूप में भजन और भाव के साथ दर्शन करने की कृपा करें। साथ में होगी श्रीमती प्रेमलता जी, दादा प्रस्थान करें मंच की तरफ। तब तक हिंदता जी से मैं कहूंगा कि प्रारंभ करें। हिंदता जी आइए ना, चलिए प्रारंभ करिए। दादा अपने कंठ को थोड़ा सु दे दें, उस गर्म तेज से उनका मंच पर प्रारंभ करें। प्रारंभ करें, भगवान का नाम लें, संकीर्तन कर लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरि बराय नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि yeah.
आपका पहुंच रहे हैं
जन्माष्टमी दर्शन करते
तो इसमें नहीं है गुरु गोस्वामी से जुड़े हैं
ये तो उसके बाद है
पहले ये तो उत्तम जुलाई तारीख से 9 तारीख से है मैंने 9 तारीख के लिए आप
Yeah. हमारी हमेशा लेता है परीक्षा देता है कई से एक दीक्षा सब विधि उसकी लेता है परीक्षा
Thank you. I Thank you. Thank you.
Thank you.
परमानंद की, जैसे तुम्हें इन शब्दों में श्री रविंद्र जयंती को लगा की दूसरी गायिका को आभार व्यक्त करूँ। हर जीव यहाँ पर जो विराजमान, हर आत्मा इतना से आपके प्रति आभार की, आपने हरि भक्तों को हरि रंग में रंगते हुए, हरि सत्संग करते हुए, हमारे गुरुदेव की प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए हम सबको परमानंद दिया। बहुत 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 आभार। समय का काल है 8 बजे में, ये हमारे समापन का समय होता है। क्या मैं गुरुदेव से श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से आज्ञा को समापन करने का या उनके अंतर मन में कोई और भाव है?
दो सब
माइक एक बार प्रेम से बोलिए, श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की।
मैं गोपियों के भावों को, उनकी बैरह रचनाओं को मैं आप लोगों के सामने अभिव्यक्त करना चाहता था, किंतु इस बार नहीं हुआ। ये प्रभु की इच्छा ही है कि अगले बार कभी आऊं तो विस्तार के साथ में इन चीजों का वर्णन कर सकूं। प्रेमपुरी में भी हमने आरंभ किया था किंतु पूरा नहीं हो सका, ये पूरा होने वाला भी नहीं है। मैंने ये सब चीजें विशेष करके श्रीमद् भागवत का पंच प्राण रास लीला है, मैं समझता हूँ उसकी भी अभिव्यक्ति गोपी गीत में, वेणु गीत में और विशेष करके भ्रमर गीत में श्रीमती राधिका जी के हृदय हृदय की पूर्ण अभिव्यक्ति है। यदि श्रीमद् भागवत से इन प्रसंगों को निकाल दिया जाए, श्रीमद् भागवत निगम फल पत्र का यह प्रेम परिपक्व फल नहीं रह जाएगा। जैसे भी हो, उद्धव जी ने गोपियों का यह जब गीत सुना, भ्रमर गीत, कृष्ण को बहुत गालियां भी दे रही है एक तरह से, उनको धूप सठ प्रतारक यहां तक ही लंपट तक भी कह रही है, हम उनको भूल जाना भी चाहती हैं, किंतु ये हरि कथा जो कृष्ण की कथाएं हैं उसको भूल नहीं सकती। बड़ी विचित्र सब बातें हैं, इस बार उसको मैं पूरा नहीं कर सका, किंतु उद्धव जी इसको सुन करके मुक्त हो गए। वे उनकी स्तुति करने लगे, ओह गोपियों मैं बहुत ही सौभाग्यवान हूँ जो आपके विरहावस्था में जो निकली हुई गीत हैं जो सारे विश्व को कल्याण कर सकते हैं, आज हमारे ऊपर में बहुत उपकार किया। और वंदना करने लगे, आशाम हो चरण रेणुषाम, मैं वृंदावन की कोई गुल्म लता भी बन जाऊं जिस पर गोपियां अभिषेक के समय अपने चरणों की धूली हमारे सिर पर रखें, जो श्रुतियों के लिए भी दुर्विघ्न है उनके लिए भी संभव नहीं। वो गोपियां कृष्ण को एक छाछ पर नचाती हैं, गोपियों ने कृष्ण का ही चित्त चुरा लिया, कृष्ण तो चुराए या न चुराए, उनकी वंदना करने लगे, यहां तक ही वंदना करते हैं। जा वही सिया अजाद ही आप तक आमई जो वैश्वरई रवि सदात्मनि राष्ट्र गोष्ठ्या कृष्णश्च तद् भगवति चरणारविन्दं नस्तं तनेष्टि यहो उपरि। तात्पर्य क्या है? गोपियों को प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मा इत्यादि शंकर सब लोग ध्यान में भी चरणों कमलों को ध्यान में भी नहीं ला पाते, उन चरण कमलों को साक्षात रूप में रास के समय में अपने स्तनों पर डरती डरती उसको रख रही है। ऐसा सौभाग्य किसका होगा? विशेष करके कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेम भिक्ष्म सब जासाम हरि प्रभो की नाम। यहां पर वंदे नंद नंद ब्रज स्त्री नाम नंद की समस्त ब्रज रमणियों को ये प्रणाम कर रहे हैं, किंतु यहां पर भूली एक वचन है वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणु, एक वचन किस लिए? किसी एक की ही चरण की भूली चाहते हैं, वो कौन होगा? आप लोग विचार करके ध्यान दे सकते हैं, वो कौन है? श्री कृष्ण बल्लभा, कृष्ण को वशीभूत रखने वाली ये श्रीमती राधिका जी, उनके चरणों की भूली की कामना कर और वंदना करके उनकी चरणों की रज को चाहिए। उद्धव जी ब्रज में नहीं रहे, गोपियों के भावों को भी न लग सके, गोपियों की पाठशाला में भी भक्ति नहीं हो सके, किंतु कुछ भाव तो उनके आए। गोपियों से पूछा, गोपियों मैं कृष्ण से जाकर के क्या कहूं, क्या कहूं जो आपके बिना गोपियां और ब्रज मर रहा है? एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले, श्रीमती राधिका जी ने कहा मत कहना उनसे जो आपके विरह में गोपियां तड़प रही हैं और मर रही हैं, ब्रजवासी लोग मर रहे हैं। क्यों? कृष्ण का जो हृदय है वो मक्खन से भी कोमल है। यदि उन्होंने सुन लिया कि गोपियां हमारे विरह में तड़प करके प्राण छोड़ रही हैं, तो वो बेचारे अपने प्राणों को छोड़ देंगे। हम तो नहीं छोड़ रहे, कृष्ण हमारे विरह में मथुरा में तड़प रहे हैं, हमने सुना किंतु मर नहीं गई, किंतु तुम उनसे जाकर के ये मत। पर बड़े आराम से आनंद से हैं, उत्सव मना रही हैं, आपको भूलने की भी चेष्टा कर रही हैं। और एक दिन में मत कहना, जैसे पुराना कपड़ा भूल जाता है उसको पानी निचोड़ने से वो फट सकता है, इसलिए धीरे धीरे कृष्ण को हमारी विरह की बात कुछ कुछ बतलाना, किंतु ये मत बतलाना जी तुम्हारे विरह में था। हाँ कहना क्यों तुम्हें भूल चुके हो, भूल रही हो। उद्धव जी सोच रहे थे कैसे कहूं कैसे कहूं, कृष्ण के पास में गए और यहाँ की बातों को एक दिन में नहीं, दो दिन तीन दिन में नहीं, थोड़े थोड़े समय के अवकाश के समय बतलाते थे और कृष्ण विरह में डूबे। गोपियों ने संदेश नहीं भेजा, भेजा किसने संदेश? जिसको गरज है, इसी से समझ सकते हैं ये कृष्ण की कैसी प्यारी, इनकी भावनाएं कैसी है। यही मैंने अन्नादिलासिता श्लोक से भक्ति के तारतम्य, प्रेम के तारतम्य से आरंभ किया, ध्रुव से, ध्रुव प्रहलाद हनुमान जी पांडव लोग और उद्धव जी, और अंत में उद्धव जी के भी आराध्या, कृष्ण की आराध्या, प्रेम की गुरु श्रीमती राधिका के भावों तक लेकर के मैंने समापन किया। यदि इसमें थोड़े से भी भावों को ले सके गोपियों का भाव देखा जाए तो आप लोगों का जीवन सार्थक हो जाए। जैसे बतलाया है रामकृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम मर्यादा कृष्ण, किंतु कृष्ण क्या है? रसिक से है, इसलिए कृष्ण में राम की राश नहीं कर सकते, कृष्ण राज कर सकते, जो आया उसको किसी को भी मना नहीं कर सकते। राम के पास में कोई आए प्रार्थना करे तो कहे अच्छा कृष्ण लीला में मैं जब कृष्ण होऊंगा तब हमारे साथ में राज कर, इस लीला में नहीं। इसलिए स्वयं भगवत्ता में सब लोगों ने एक स्वर से इसको स्वीकार किया, एक चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान, रस के आधार है, इसलिए उनके चरणों में मैं वंदना करके आज मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। किंतु उसके पहले मैं सब श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। यदि ऐसे रसिक श्रोता नहीं रहते तो ऐसी रसिक कथाएं नहीं, इसलिए इनकी वंदना। इसके आयोजक मैं उन सबका नाम तो नहीं जानता, आयोजक में हमारे नारायण जी बैठे हैं, उन आयोजकों का नाम ये बतलाएंगे जो आयोजन करने वाले हैं। आयोजन में किसी प्रकार से पैसे से रुपये से बात से जो सहायता किया, और ये राधा कृष्ण के गुणगान को करने वाले कीर्तनिया लोग जो अपनी रसमयी कीर्तन की वर्षा से सबको हरे में रंग में रंग दिया, इन संकीर्तन करने वाले विशेष करके सूरदास जी का नाम हमने सुना, अरे सूरदास वल्लभाचार्य वाले, उनसे इनको कम नहीं दिखता। ये सतगुरु जैसा इनका नाम है ऐसा ही इनका गुण है। इनको भगवान निरोग पूर्वक आयु दें और कृष्ण लीलाओं का ये प्रचार करें, और सबको मैं आशीर्वाद करता हूँ कृष्ण से, हे कृष्ण इनको अपनी प्रेममयी भक्ति, गोपियों की प्रेममयी भक्ति आप बताओ, यही कह करके मैं अपना वक्तव्य सुना।
गुरुदेव के पवित्र मुखारविंद से तीन दिन के इस सत्संग में सुख क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है और प्रेम क्या है, जीवन के लिए तीनों तत्वों का, तीनों तत्वों की विवेचना हुई। और मैं विश्वास दिलाता हूँ महाराज जी को कि हमने बहुत ध्यान से इन तथ्यों का आपके आपके मुखार से